भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के नौवें अध्याय पर चर्चा है। आप सब नौवें अध्याय का जो पहला और दूसरा श्लोक है उसको दोहराएंगे, आप सब हमारे पीछे दोहराएंगे। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत चरितानि च काले निर्मन्थने काले स्मरन्ति तन्गायत स्मरन्ति तन्गायत
श्रीशुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा एकदा एक दिन गृहदासीषु जब घर की नौकरानियां काम में लगी हुई थी यशोदा माता यशोदा नंद गेहिनी नंद महाराज की रानी कर्मंतर अन्य कामकाजों में नियुक्तासु लगी हुई निर्ममंथ मथने लगी स्वयं स्वयं दधि दही यानी
जो यानी जो इह इस संबंध में गीतानि गीत तद बाल चरितानि जिसमें अपने बालक के कार्यकलापों का वर्णन था च तथा दधि निर्मंथने दही मथने के काले समय स्मरंती स्मरण करती तानी उन्हें अगायत गाने लगी। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उद्धरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीप मालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में विशेषतया मुंबई में यह त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गाय ऐसी सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के घरों में जाकर माखन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया जाता है गया दही अच्छा नहीं लगता था। दही मथते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता है कि माता यशोदा की लीलाओं को किसी भी समय ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को यथा पूतना अघासुर शकटासुर तथा तृणावध वध को कविता में ढाल लिया था और दही मथते समय वे कवित्वमय गीतों को गाती रहती थीं। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावना मृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। vanchagalpatarubhyascha kripasindubhyaiva cha vatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama om Vishnu padaya Krishna preshthaya bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashat Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarva Shastra Dipiyushaha, Sarva Vedeka Satphala, Sarva Siddhanta Ratnadya, Sarva Lokaika Drikprada, Sarva Bhagavata Prana, Srimad Bhagavata Prabho, Kali Dhanto Didaditya, Shri Krishna Parivartita, Paramananda Pathaya, Prema Varshaksharayate, Sarvada Sarvasevyaya, Shri Krishnaya Namostute, Madeka Bandho Matsangi, Madgurau Man Mahadana, Mannistaraka Madbhagya, Madananda Namostute, Asadhu Sadhu Tadain, Atini Chochatah Kara, Hanamuncha Kadachinma, Premnarit Kanthayosvura. Hare Krishna. तो इस अध्याय और अगले अध्याय में, नौवें और दसवें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है माता यशोदा के द्वारा कृष्ण का बांधे जाना। तो ये बहुत छोटा सा अध्याय है, लेकिन इस छोटे से अध्याय पर बहुत सारे भक्तों ने इस सुंदर लीला पर बहुत विस्तार से प्रवचन किए हैं। हम लोग भी कार्तिक के समय यहाँ पर 3 दिन के लिए यही लीला सुन रहे थे और बड़े विस्तार से आप सब इसको सुन चुके हैं, इसीलिए हमने सोचा कि अब इसको विस्तार से नहीं कहेंगे, केवल अध्याय का जो सार है उसको प्रस्तुत करेंगे और फिर आगे के अध्यायों की ओर बढ़ेंगे। तो इस अध्याय में बहुत छोटा, केवल 23 श्लोक हैं। पहले 5 श्लोकों में हम देखते हैं कि कैसे यशोदा एक समय दही का मंथन कर रही हैं, जैसे हमने ये जो श्लोक पढ़ा इसमें लिखा है। फिर 6ठे श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान ने दही का मटका तोड़ा, माखन चुराई और फिर वो भागे और अंततः यशोदा ने उनको बांध दिया। 15 से लेकर 21वें श्लोक में यशोदा के गुणगान को कहा गया है या यशोदा की बड़ी ऊंची स्थिति को दर्शाया गया है। और अंतिम 2 श्लोकों में भगवान बंधे हुए हैं, लेकिन यमलाजुन वृक्षों की ओर देखकर उनके पूर्व जन्म को वो स्मरण करते हैं। तो ऐसे ये पूरा अध्याय बटा हुआ है भगवान की लीला का। तो यह हम लोग पढ़ रहे हैं कि एकदा गृहदासीशु, तो एक बार जब सारी ग्रह की जो दासियां थीं वो कार्य में लगी नहीं थी, यशोदा ने लगा दिया था कि आप दूसरा कार्य करो, दही का मंथन मैं करूंगी। तो ये जैसे श्रील प्रभुपाद भी समझा रहे थे कि ये लीला दीपावली के दिन हुई, जिस दिन दीपावली थी उस दिन सुबह सुबह उठकर फिर यशोदा ने ये लीला की। और इस लीला का वर्णन कई स्थानों पर आया है। जैसे जब कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाएं अर्पण कर रही होती हैं श्री कृष्ण को, तो उस समय भी इस लीला का स्मरण करती हैं, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये लीला हुई कुंती महारानी भी वहां पर थी ब्रज में, और वो भी इस लीला को देख रही थी। इसीलिए वो अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य स मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। तो वो कहती हैं, गोपिया ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत्, गोपी ने अर्थात यशोदा ने आपके उदर पर रस्सी बांध दी थी, और उस समय क्या हुआ था, याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, और मैंने देखा कि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिससे जो काजल लगा हुआ था वो बह रहा था आपकी आंखों का। वक्त्रम निनीय भय भाव नया स्थितस्य, छड़ी देखकर मां के हाथ में आप इतने भयभीत हो गए थे, इतने डरे हुए थे, आपकी आंखों में भय था। समाम विमोहयति, ये मुझे बड़े मोह में डालने वाली बात है, क्यों, भीरपि यत् विभेति, आपसे तो भय भी भयभीत रहता है और आप यशोदा से भयभीत थे, तो ये बड़े मोह में डालने वाली मेरे लिए लीला थी। तो ऐसे ये बहुत सुंदर लीला है। तो माता यशोदा अब सुबह सुबह दही का मंथन कर रही हैं, और फिर सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि माता यशोदा ने केसरिया पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी, कानों में उनके जो कुंडल थे वो हिल रहे थे और उनको पसीने आ रहे थे, ये सारी चीजें उन्होंने वर्णन किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि क्या आवश्यकता थी सुखदेव गोस्वामी को ये वर्णन करने की, लीला का वर्णन कर रहे थे, अब ये वर्णन क्यों करना है कि यशोदा कैसी दिख रही थी, क्या साड़ी पहनी थी, उनको पसीने आ रहे थे, उन्होंने फूलों को लगा रखा था, बालों में उनके मालती फूल लगे हुए थे, तो ये इतने विस्तार से ये वर्णन करने की क्या जरूरत है सुखदेव गोस्वामी को। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि हम में से जो भी कोई भगवान से वात्सल्य भाव में प्रेम करना चाहता है, उसे यशोदा के इस वर्णन को सुनना चाहिए, ताकि यशोदा से आसक्ति हो सके, और यशोदा से आसक्ति होकर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम वात्सल्य भाव को प्राप्त कर सकें। और यही कारण है, प्रभुपाद लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी इतने विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार केसरिया पीले रंग की साड़ी है। वैसे और भी इनका वर्णन, इनको विस्तार से ये जो सुखदेव गोस्वामी ने किया, इसका अर्थ कई जगह पर समझाया गया है। जैसे कहा कि हाथों में चूड़ियां थी, कानों में, हाथों की चूड़ियां हिल रही थी, कानों में जो बालियां थी वो हिल रही थी, तो इसको समझाया गया है कि दरअसल, क्योंकि हमने अभी अभी सुना कि यशोदा गा रही थी कृष्ण की बाल लीलाओं को, ये नियम था कि अगर कृष्ण कोई असुर मार देते थे, आगे चलकर भी असुरों को मार कर आते थे, तो शाम को जब आकर बताते थे सारे बालक कि ऐसा हुआ, तो फिर उसको कविता के रूप में, गाने के रूप में, भजन के रूप में गाया जाता था, और फिर दिन भर ब्रज के लोग गाते रहते थे। तो यशोदा भी इस समय दही मंथन कर रही हैं और गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ऐसे वो बड़े प्रेम से दही मंथन करने लगी और कृष्ण की लीलाओं को गा रही हैं। और फिर तो ये जो वर्णन किया गया, क्योंकि वो कृष्ण की लीलाओं को गा रही थी, तो जो हाथ की चूड़ियां हैं वो दरअसल करताल की तरह है, क्योंकि माता यशोदा गा रही हैं तो करताल की भी जरूरत है, तो फिर ये जो चूड़ियां थी उन्होंने करताल का कार्य किया, वो फिर आवाज करने लगी। तो उससे करताल बना। और फिर अब करताल हो रहा है, माता यशोदा गा रही हैं, जय श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय, माता यशोदा गा रही है मतलब कीर्तन हो रहा है, करताल बज रहे हैं, तो किसी को नृत्य भी करना चाहिए। तो कानों के कुंडल वो नृत्य करने लगे, इसीलिए वो कानों के कुंडल हिल रहे हैं। और फिर वर्णन किया कि उनके जो बालों में मालती के फूल थे वो गिरने लगे नीचे। तो आचार्य वर्णन करते हैं कि ये जो मालती के फूल ये नीचे गिरने लगे, ये इसलिए ये सोचकर कि यशोदा इतनी श्रेष्ठ भक्त होते हुए स्वयं सेवा कर रही है, और आज कृष्ण के लिए उसने विशेष करके पद्मगंधा गायों का दूध निकाला है। कृष्ण की गायों में नंद महाराज के पास जो गायें थी, अलग अलग श्रेणियों की गायें थी, उनमें से एक थी पद्मगंधा गाय। ये पद्मगंधा गाय बड़ी श्रेष्ठ गायें थी, और इन पद्मगंधा गायों को भी यशोदा मैया ने विशेष करके ये मक्खन निकालने से पहले उन्होंने गोवर्धन की जो घास है उसको चरने भेजा था। गोवर्धन का नाम गोवर्धन क्यों है? क्योंकि वहां पर ऐसी बड़ी स्वादिष्ट और सुगंधित घास मिलती है जिसको खाकर गोवर्धन, गायों का वर्धन अर्थात गायों का जो दूध है बड़ा सुगंधित हो जाता है, गाय प्रसन्न हो जाती हैं। तो ऐसे इसीलिए उसको गोवर्धन कहा जाता है। तो गोवर्धन की हरी हरी घास, सुगंधित घास, पौष्टिक घास, केवल सुगंधित नहीं बड़ी पौष्टिक घास, उसको खिलाया विशेष घास को। तो पद्मगंधा गायों को खिलाया है ये मालती के वृक्ष सोचने लगे, और उनके दूध निकालकर अब ये दही, और अब दही का मंथन कर रही है। तो इसीलिए ये बहुत श्रेष्ठ है, स्वयं कर रही है, इसके सर पर रहने की हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए वो गिरकर चरणों में आ गए कि हम चरणों में स्थान है ऐसे महान भक्त के हमारे। तो ऐसे ये वर्णन यशोदा का किया गया। और प्रभुपद लिखते हैं कि अगर हम वात्सल्य भाव में ये करना चाहते हैं तो हमें यशोदा का स्मरण करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग एक दिन यशोदा बन जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि हम बड़ी कड़ाई से यशोदा के पद चिन्हों पर चलें। इसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। जो भगवान के नित्य संगी हैं भगवान की शाश्वत लीलाओं में, वे रागात्मिका भक्त हैं या राग भक्त हैं। राग मतलब उनको स्वतः प्रेम हो जाता है, उनको बोलना नहीं पड़ता है कि ये कीजिए, जब कीजिए, बैठकर कथा सुनिए इत्यादि, उनको स्वतः प्रेम है। तो वो जो स्वतः स्वरित प्रेम है उनके हृदय में, तो उनको राग या रागात्मिका भक्त कहते हैं। और ऐसे भक्तों के जो पद चिन्हों पर चलते हैं उन्हें रागानुगा कहते हैं, राग भक्तों का अनुगमन करने वाले। तो जब हम साधना भक्ति करते हैं तो साधना भक्ति में वैधी साधना भक्ति और रागानुगत साधना भक्ति होती है। साधना मतलब अभ्यास, तो हमें दोनों का अभ्यास करना होता है। पहले वैधी भक्ति, जहां विधि विधानों के द्वारा हम लोग बड़ी कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं, उसको वैधी भक्ति कहते हैं। और फिर जब हम वैधी भक्ति का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, तब किसी एक भगवान के नित्य संगी का, किसी एक ब्रजवासी का हम अनुगमन करते हैं, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो ऐसे यह प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमें यशोदा के भावों को स्वीकार करने के लिए उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो अब जब वो दही मंथन कर रही थी, कृष्ण सो रहे थे, सुबह का समय था, बहुत जल्दी उठ गई थी यशोदा। तो कृष्ण उठकर आए, उन्होंने देखा उनको भूख लगी, तो जब उठे उन्होंने आंखें खोली, आसपास माता दिखाई नहीं दी, सोचने लगे कहाँ है। बच्चा जैसे ही आंख खोलता है माँ को देखना चाहता है, तो उस समय उनको आवाज आई बाहर से, वो इधर उधर देख रहे थे कि कहाँ है यशोदा। और उनको बाहर से आवाज आई, यशोदा गा रही थी, गोविंद दामोदर माधवेति। तो कृष्ण ने सुना और कृष्ण आकर्षित हो गए। देखिए, इसीलिए जब हम शुद्ध भक्तों के द्वारा गाए हुए भजन को दोहराते हैं तो कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो कृष्ण चलकर आए, अब उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने देखा कि माता सेवा कर रही है। उन्होंने वो जो मंथन करने का जो मथनी थी उसको पकड़ लिया, छोटे से हाथ थे और प्रयास किया पकड़ने का। तो जैसे ही पकड़ा, जरा सा वो रुकी तो यशोदा ने देखा तो कृष्ण दिखाई दिए। यशोदा ने उनको उनके मुख को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई और वो जान गई कि अब ये दूध पीना चाहते हैं। तो यशोदा ने तुरंत वो कार्य बंद कर दिया और कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। अभी कृष्ण को स्तनपान करा ही रही थी और कहना चाहिए कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए थे। अभी वो पीना चाहते थे, वो पी रहे थे, लेकिन अचानक उसी समय यशोदा को स्मरण आया कि उन्होंने चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रखा था। तो वो तुरंत कृष्ण को छोड़कर वहां से ऐसे रखकर चली गई। एक स्थान पर वर्णन है कि पूतना प्रयास कर रही थी जब भगवान दूध पीना चाहते थे कि उसको दूर करे, चिल्ला रही थी छोड़ छोड़ मुझे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाए, भगवान को अलग नहीं कर पाई। और यहां भी भगवान यशोदा अलग करना चाहती थी, भगवान अलग नहीं होना चाहते थे, वो हाथ मार रहे थे, पकड़ रहे थे, नहीं 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 अभी मुझे पीना है, लेकिन यशोदा ने बड़ी आसानी से नीचे रख दिया। तो जो कार्य पूतना अपनी सारी राक्षसी शक्ति के कारण नहीं कर पाई, यशोदा ने बड़ी आसानी से प्रेम से कर दिया। तो कृष्ण को रखकर चली गई, जमीन पर रख दिया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि क्या ये यशोदा का कार्य गलत था जैसा कृष्ण सोच रहे थे। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया कि माता का काम है बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को दूध पीना है, तो माता छोड़ के चली गई, गलत किया इन्होंने, इसलिए बहुत गुस्से में आ गए श्री कृष्ण। फिर ये भी सोच रहे थे कि मैं वैकुंठ छोड़कर आया हूं इसके लिए और ये दूध उबलते हुए दूध के लिए मुझे जमीन पर पटक कर चली गई, कोई वैल्यू नहीं इस घर में मेरी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि क्या ये यशोदा का कार्य गलत था, गलत किया यशोदा ने? बिल्कुल नहीं, प्रभुपाद कहते हैं। क्यों गलत नहीं किया? क्योंकि जब हम लोग सेवा करते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, तो एक सेवा दूसरी सेवा से महत्वपूर्ण होती है। और जब उस समय के लिए कोई महत्वपूर्ण सेवा है तो उसको करने के लिए अगर हमें एक सेवा छोड़नी पड़ती है तो छोड़नी चाहिए, जैसे यशोदा ने छोड़ा। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सी सेवा महत्वपूर्ण है कौन सी नहीं है? मान लीजिए दोनों सेवाएं एक साथ आई हैं, तो आपको कैसे, एक भक्त को कैसे पता चलेगा कि कौन सी सेवा हमें करनी चाहिए कौन सी नहीं? तो प्रभुपाद भगवद गीता के श्लोक से कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं ना हृदय में बैठा हूं, तो मैं भक्त को आदेश देता हूं, मैं भक्त को निर्देश देता हूं। तो इसीलिए भगवान हमारे हृदय में हैं और वो हमें मार्ग निर्देशन देते हैं। तो इसीलिए यशोदा का कृष्ण को छोड़कर चले जाना कोई गलत नहीं था, क्योंकि ब्रज में और विशेष करके यशोदा के घर में जो कुछ है वो कृष्ण की सेवा के लिए है। तो वो जो दूध भी उबल रहा था वो कृष्ण की सेवा के लिए था, और इसीलिए उस सेवा को पूरा करना यशोदा का कर्तव्य था। या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए, एक बड़ा सुंदर इससे हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। यशोदा ने सोचा कि दूध भी भक्त है भगवान का, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है, कोई जड़ पदार्थ नहीं है वहां। तो यशोदा ने सोचा दूध भी भगवान का भक्त है और वो भी सेवा करना चाहता है। दूध गर्म क्यों हो रहा है, बॉइल क्यों हो रहा था? ताकि आगे कृष्ण पिए, तो वो भी सेवा करना चाहता है। लेकिन अगर ये बॉइल होकर गिर गया पूरा उबल कर, तो फिर वो सेवा नहीं कर पाएगा। तो उसकी सेवा में मदद करने के लिए यशोदा अपनी सेवा को छोड़कर गई। तो इसका अर्थ ये है, हमें बहुत महत्वपूर्ण बात इससे सीखनी चाहिए कि हमें केवल अपनी सेवा पर ही ध्यान नहीं देना है, वो तो देना ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि क्या हम अन्य भक्तों को मदद कर रहे हैं उनकी सेवा पूरी करने में। और अगर हम कर सकते हैं तो हमें निश्चित करना चाहिए। ये कभी कभी भक्तों में बड़ा गलत भावना आ जाती है भक्ति करते हुए कि हमें बस इतना करना है, भक्ति का मार्ग ये है, हमें जो कहा जाए बस चुपचाप करना है। हम देख रहे हैं कहीं और पर आवश्यकता है, हम देख रहे हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये बहुत गलत भावना है। हम अगर किसी भक्त को मदद कर सकते हैं उनकी सेवा में तो हमें भाग कर जाना चाहिए जैसे यशोदा मैया गई है, क्योंकि अगर हम किसी भक्त को उनकी सेवा में मदद करके उनको कृष्ण की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये कृष्ण को प्रिय है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण क्रोधित हो गए। हाँ, बाहरी दृष्टि से क्रोध दिखा रहे हैं कृष्ण क्योंकि लीला करना चाहते हैं, लेकिन प्रसन्न है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने जब देखा कि यशोदा चली गई तो बड़े क्रोध में आ गए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो अपने होठों को दबाने लगे, अपने दांतों से काटने लगे। बच्चा होता है ना, ऐसे गुस्से में करता, बहुत गुस्सा आ गया तो ऐसे ऐसे दबा रहे हैं होठों को, आंखें लाल लाल हो गई उनकी, बहुत गुस्से में आ गए कृष्ण। और सही में गुस्सा कर रहे थे, बड़ा गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे हुआ। और फिर उन्होंने देखा कि कुछ बालक जब गुस्से में आता है तो वो कुछ करना चाहता है ताकि सब लोग मेरी ओर देखें, क्योंकि अगर वो गुस्से में है, वो रो रहा है और कोई ध्यान नहीं दे तो बालक को लगता है क्या फायदा मेरे रोने का। तो इसलिए आप देखिए कि जनरली साधारणता अपने और ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक कुछ ना कुछ करता है। तो अब कृष्ण ने भी सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, ये तो छोड़कर चली गई, कोई वैल्यू नहीं दे रही है मुझे। तो उन्होंने वहां पर एक पत्थर पड़ा था, कुछ जगह पर कहा गया है कि चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा होता है, तो जो सिल पर जिससे पीसा पीसा जाता है छोटा सा टुकड़ा पत्थर का, वो पड़ा था। तो उन्होंने वो लिया और उठाकर फेंका, जिस दही का मंथन कर रही थी यशोदा उसको ही तोड़ दिया। बेचारी ने कितनी मेहनत की थी, पद्मगंधा गाए और फिर उनको गोवर्धन में उनको घास खिलाई, फिर उसके बाद उनका दही दूध का निकाला, दूध से दही बनाया और फिर उसको मंथन कर रही है सुबह सुबह उठकर, कृष्ण ने तोड़ दिया। और फिर जब कृष्ण ने तोड़ दिया तो फिर अब उनको और गुस्सा आया, क्योंकि उनको लगा ये अभी बहुत नहीं हुआ, कुछ और करना चाहिए। तो अभी तक आज तक यशोदा ने जो शिकायतें सुनी थी वो इस पर थी कि वो दूसरों के घरों में जाकर चोरी करते थे, लेकिन आज श्री कृष्ण ने अपने ही घर में चोरी कर ली। उन्होंने सोचा अब तो कुछ ऐसा करूंगा कि यशोदा को बड़ा कष्ट होना, जो उसने मुझे कष्ट दिया है मैं उसको कष्ट दूंगा। आप भगवान को प्रेम दीजिए, भगवान आपको प्रेम देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम, ये भगवान बताते हैं। तो उन्होंने कहा इसने बड़ा कष्ट दिया है, मैं अब इसको कष्ट दूंगा। तो तोड़ने से मन तो भागने लगे, भागते समय भूल गए कि वो दूसरे कमरे में जाकर चुपके से माखन खाने वाले हैं। अब थोड़ा आंखें खोलकर बैठे रहो, अच्छा लगेगा। एकदम सामने बैठे हो और सो रहे हो, बोलने वाले पर क्या प्रभाव होगा। बेड वेड लगवा दें आपके लिए नहीं। सो यशोदा को पता ना चले इसीलिए कृष्ण भाग रहे कि दूसरे कमरे में, लेकिन भागते समय भूल गए कि वो जो दही गिर गया था टूटने से, उन्होंने तोड़ा था मटका और दही सब गिर गया था, उसी दही के ऊपर पांव रखकर जा रहे हैं। वो उनको याद नहीं रहा कि पता चल जाएगा यशोदा को, तो ऐसे भाग रहे हैं, छोटे छोटे दही के ऊपर भागते भागते उनके पांव के सब निशान बन रहे हैं। और करते करते अगले कमरे में गए, वहां एक उखल रखा था उसको उल्टा किया, उसके ऊपर खड़े हो गए और ऊपर जो छींके पर माखन रखा हुआ था उसको तोड़कर खाने लगे। उसको तोड़ा मटकी को और वहां से माखन निकाल निकाल के खाने लगे। तो जब माखन खाने लगे और फिर खुद भी खाया, बंदरों को भी खिलाया, ऐसा वर्णन है कि कौवे भी वहां आ गए थे। तो सारे लोग, सब एक फीस्ट चल रहा था सबका, और ध्यान रख रहे थे श्री कृष्ण इधर उधर देखते हुए बार बार कि यशोदा कहीं आ तो नहीं रही है, क्योंकि पता था आएंगी। वो तो दूध बस पिला रही थी, छोड़ गई थी केवल वो दूध को संभालने के लिए, जो गिर रहा था उबल रहा था, तो आने वाली है। तो इसलिए इधर उधर देख रहे थे, खा रहे थे खा रहे थे। अब ऐसा हुआ कि उनकी पीठ थी उस तरफ जिस तरफ से यशोदा आने वाली थी, और सामने बंदर बैठे हुए थे जिनको वो खिला रहे थे। अब यशोदा आई और यशोदा ने देखा, रे कहाँ गया कृष्ण, देखा मटकी टूटी पड़ी है, दही सब बिखरा पड़ा है। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ पांव के निशान हैं। तो यशोदा उन निशानों को देखते देखते पीछे गई, तो जैसे उसने कमरे में प्रवेश किया, कृष्ण की तो पीठ थी, कृष्ण देख नहीं पाए, वैसे इधर उधर देख रहे थे, लेकिन बंदरों ने देख लिया और बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगे, भागे चिल्लाकर। तो जैसे वो भागे, कृष्ण भी समझ गए, अच्छा कृष्ण को संदेश दे रहे थे, भागो अब भागो, डांट पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है। तो कृष्ण उतर कर भागे, और जब कृष्ण भागे तो क्यों भागे, क्योंकि पहली बार वो छड़ी लेकर आई थी यशोदा, आज तक कभी छड़ी नहीं लाई थी। यशोदा ने कहा आज इसको सबक सिखाती हूँ। तो माता के हाथ में छड़ी को देखकर घबरा गए, डर गए कृष्ण कि आज तक इसने ऐसा नहीं किया, आज मारेगी मुझे, तो भागे वहां से। तो कृष्ण भाग रहे हैं और यशोदा भी पीछे पीछे भागी। प्रभुपाद समझाते हैं कि जिन भगवान को ज्ञानियों का ज्ञान, योगियों की तपस्या और योग ध्यान पकड़ नहीं सकता, उनको पकड़ने के लिए यशोदा भाग रही। तो यशोदा, और उस समय भी जब वो भाग रही थी तो उनके सिर पे जो फूल लगे थे वो गिर रहे थे, लेकिन इस समय उनका भाव अलग था। पहले भी फूल गिरे थे ये सोचकर कि कितनी महान है यशोदा, इसके सर पर नहीं रहना चाहिए, हमें चरणों में रहना चाहिए, लेकिन अब फूलों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अब ये यशोदा बदल गई है, अब ये मारने जा रही है भगवान को छड़ी लेकर, हम इसका साथ नहीं देंगे, ऐसे लोगों का संग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसीलिए फूल गिर गए। तो यशोदा भागने लगी, पसीना आ रहा है यशोदा को, थक गई है लेकिन भाग रही है। तो भगवान ने जब उनके प्रयास को देखा कि इस तरह वो भाग रही हैं, तो फिर वे उन्होंने बंधना स्वीकार किया। तो देखिए, जो कर्मी होते हैं उनका उद्देश्य स्थूल रूप में भोग करना होता है, जो ज्ञानी होते हैं वो सूक्ष्म रूप में भोग करना चाहते हैं, जो योगी होते हैं वो इस ब्रह्मांड को नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण को नियंत्रण कर लेते हैं। इसीलिए भक्त श्रेष्ठ माने गए हैं, यशोदा विशेष करके बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। क्यों, क्या क्या अंतर है ये ज्ञानी योगी कर्मी और भक्त में? एक अंतर हमने अभी बताया। और भक्त की श्रेष्ठता क्या है? भक्त की श्रेष्ठता इस लीला में प्रकट होती है। क्या श्रेष्ठता है भक्त की? भक्त कृष्ण को डांट सकता है। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि एक योगी जो योग साधना में ध्यान में लगा है वो कृष्ण को डांटेगा, यह ज्ञानी कृष्ण को डांटेगा, लेकिन एक भक्त डांट सकता है। दूसरा महत्व यहां इस लीला में देखते हैं कि भगवान डर रहे हैं, डांट खाने से डर रहे हैं भगवान। ये कहीं वर्णन नहीं आता कि वो किसी ज्ञानी किसी योगी से डर रहे हैं। तीसरी चीज, वो क्षमा मांगने के लिए तैयार है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब यशोदा बांधने का प्रयास कर रही थी तो भगवान क्षमा मांग, नहीं 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 थोड़ा क्षमा कर दो, कि नहीं अगली बार नहीं करूंगा, क्षमा मांगने तैयार है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने अन्य स्थानों पर क्षमा ना मांगी हो अपने भक्तों से, एक आध स्थान पर वर्णन आता है, लेकिन यहां तो सही में घबरा कर मांग रहे हैं, डर कर मांग रहे हैं कि क्षमा कर दो, मारना नहीं इत्यादि। तो ये एक भक्त की श्रेष्ठ स्थिति है कि वो कृष्ण को बांध सकते हैं। तो फिर यशोदा ने सोचा, पकड़ तो लिया लेकिन सोचा कि इसको बांध लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चा जब बहुत डर जाता है तो डर के भाग जाता है, कहीं बाहर चला जाता है। तो यशोदा सोच रही थी ऐसा ना हो जाए कि ये डर कर भाग जाए, तो फिर मैं इसको कहां ढूंढने जाऊंगी, तो इसको बांध देती हूं ताकि घर के बहुत से और काम करने हैं, घर के काम कर सकूं। तो तो यशोदा ने लिया और उखल से ही बांधने का प्रयास किया, तो रस्सी ली, रस्सी पहले वर्णन है, कई जगह पर वर्णन है कि पहले यशोदा ने सोचा इतनी सी तो कमर है कृष्ण की, मुट्ठी भर भी कमर नहीं थी कृष्ण की, तो इसको बांधने में कितनी रस्सी लगेगी। तो ज्यादातर स्त्रियां अपने बालों में ऐसे धागा, मोटा धागा या मोटा रस्सी बांधती हैं, तो उन्होंने वो निकाला, इतनी सी कमर है ऐसे ही बांध देंगे। तो बांधने का प्रयास किया, उंगली, दो उंगली छोटी पड़ गई रस्सी। यशोदा ने देखा तो यशोदा ने एक रस्सी इधर पड़ी थी उसको लिया, उसको जोड़ा और फिर उसको बांधा, फिर भी दो उंगल छोटी। आप सोचिए कि इतनी ही छोटी थी रस्सी और बड़ी रस्सी बांध दी, फिर भी रस्सी इतनी छोटी। सुखदेव गोस्वामी कहते घर की जितनी रस्सियां थी बांध दी उसने यशोदा ने, और सारी गोपियां आ गई आसपास की और वो सब आनंद लेने लगी। गोपियां कहने लगी कि यशोदा से तुम्हारे लाला के ललाट पर बंधना नहीं लिखा है, बांधो मत इसे। लेकिन यशोदा ने कहा तो बांध कर रहूंगी। तो फिर गोपियां रस्सियां लाने लगी, एक ही गोपी ला रही, लो 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 ये रस्सी लो, ये रस्सी लो, जैसे मानो वो कह रही हो कि मेरी भी सेवा हो जाए। जब भगवान की सेवा होती है, कोई एक भक्त सेवा कर रहे हैं, तो अन्य भक्तों को मदद करनी चाहिए ताकि मेरी भी वो सेवा पूर्ण हो जाए भगवान के लिए। तो गोपियां लाला के दे रही हैं, यशोदा रस्सी पर रस्सी, रस्सी पर रस्सी बांधे जा रही है, रस्सी कितनी बड़ी हो गई होगी आप सोचिए। लेकिन हमेशा जब भी बांधने का प्रयास करते, यहां तक लाते, तो दो उंगल छोटी पड़ती थी। लेकिन यशोदा ने प्रयास नहीं छोड़ा। आप सोचिए हम लोगों के साथ अगर ऐसा, और गोपियां आनंद ले रही है उस लीला का, कोई भयभीत नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको डर लगा कि ये क्या हो रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया, ये कैसे हो सकता है, इतनी रस्सियां बांध कर भी रस्सी उतनी ही छोटी है। उन्हें आनंद आ रहा, कोई भय नहीं। तो फिर सारी रस्सियां बांधने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो अंत में भगवान ने स्वीकार किया बंधना। तो ये जो दो उंगली छोटी है, इसके लिए आचार्य समझाते हैं कि ये हमारे प्रयास और कृष्ण की कृपा को सूचित करती है। और यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद समझाते हैं कि हम लोग कहते हैं कि भगवान भक्त से बंध जाते हैं, भगवान भक्त से परास्त हो जाते हैं, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान भक्त से बंधते हैं, भगवान भक्त के अधीन आते हैं, भगवान भक्त से परास्त होते हैं अपनी इच्छा से। भक्त भी उन्हें बाध्य नहीं कर सकते, और ये दिखलाने के लिए भगवान बंधे नहीं शुरुआत में, कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी हम उन्हें बांध नहीं सकते। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर भक्त ने भगवान को बांध लिया तो भक्त श्रेष्ठ हो गया, नहीं, भक्त से भगवान बंधते भी हैं तो केवल इसलिए अपनी इच्छा से। तो अब भगवान ने बंधना स्वीकार किया और यशोदा ने फिर उनको बांध दिया, उन्होंने छड़ी दूर फेंक दी क्योंकि भगवान बहुत डर रहे थे, और उन्होंने उनको बांध दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कृष्ण की इस लीला में कई विरोधाभास चीजें आती हैं, जैसे वो कृष्ण जो सारे ब्रह्मांडों को नियंत्रित करते हैं यशोदा के प्रेम से नियंत्रित हो गए, बंध गए। वो कृष्ण जिनका वर्णन उपनिषदों में आता है, हम लोग ईशोपनिषद में पढ़ते हैं कि वो भागने वालों में सबसे तेज है, अन्यों से तेज भागते हैं, कोई उनसे तेज नहीं भाग सकता, लेकिन वो भगवान यशोदा के द्वारा भागकर पकड़ लिए गए, ये प्रेम है। जिनकी सेवा सहस्त्रों लक्ष्मियां करती हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, जिनको कोई चीज की कमी नहीं है, वो माखन चुराने के लिए जाते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे विरोधाभास इस लीला में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कुंती महारानी कह रही हैं कि जिससे भय भी घबराता है, अर्थात जिन भगवान से डरकर यमराज अपनी सेवा करते हैं, अन्यों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं, उन जिनसे भगवान, जिनसे यमराज भी डर जाते हैं, वो भगवान इस लीला में आंखों में आंसू लिए हुए डरे हुए खड़े हैं। और ये होता है भक्त के प्रेम के कारण। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यशोदा की स्थिति को कहते हुए कहते हैं, बताते हुए कहते हैं कि यशोदा की स्थिति वो है जो ब्रह्मा जी की नहीं है, जो शिव जी की नहीं है, और इतना ही नहीं वो कहते जो लक्ष्मी जी की भी नहीं है, वो यशोदा की स्थिति है। ब्रह्मा जी कभी भगवान को बांध नहीं सकते, कभी भाग नहीं सकते उनके पीछे पकड़ने के लिए, कभी उनको डांट नहीं सकते, डांट तो ब्रह्मा जी को पड़ती रहती है, ब्रह्मा जी कभी नहीं डांट सकते, शिव जी कभी नहीं डांट सकते, शिव जी कभी नहीं बांध सकते, स्वयं लक्ष्मी देवी जो उनकी इतने निकट हैं, भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, वक्षस्थल पर स्थान है उनका, लेकिन वो भी भगवान को बांध नहीं सकती। इसीलिए यशोदा को अर्थात एक प्रेमी भक्त का स्थान अन्य सभी देवताओं से या फिर ऐसे जो ऐश्वर्य भक्त ऐश्वर्य के भाव में सेवा कर रहे हैं उन सबसे श्रेष्ठ है। इसको बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी यशोदा की तुलना करते हैं या यशोदा के बारे में वर्णन करते हैं कि यशोदा कौन है, क्या स्थान है, जो ब्रह्मा जी का नहीं, शिव जी का नहीं, जो लक्ष्मी जी का नहीं, वो स्थान यशोदा का है। कृष्ण ने वो महत्व वो प्रेम यशोदा को दिया है। तो फिर यशोदा ने बांध दिया और अपने अन्य कार्यों में लग गई जाकर। तो अब अंतिम दो श्लोकों में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जब बंधे हुए हैं तो उन्होंने देखा यमलार्जुन वृक्षों को। दो वृक्ष हैं, अर्जुन वृक्ष बहुत बहुत पुराने और बहुत लंबे ऊंचे, और उन दोनों को देखा और उनको स्मरण आया कि पूर्व काल में इन दोनों को मेरे शुद्ध भक्त नारद ने श्राप दिया था। तो अब श्री कृष्ण नारद के श्राप को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे और उसका वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी जिज्ञासा? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं।
How to do chintan and nidhyasana?
चिंतन कैसे करना चाहिए भगवान का और किस प्रकार हम भगवान को सतत स्मरण कर सकते हैं। भगवान सारे योग विद्याओं के स्वामी हैं, योगेश्वर कहलाते हैं। तो इसीलिए जब भगवान का चिंतन करना है, स्मरण करना है ध्यान के द्वारा, और ध्यान की ऊंची अवस्थाओं तक पहुंचना है। ध्यान की ऊंची अवस्थाएं क्या हैं? ध्यान की जैसे जैसे गाढ़ा होता जाता है, कई अवस्थाएं हैं ध्यान की। तो उस ध्यान को कैसे हमें बड़ा गाढ़ा करना है, अर्थात कहना चाहिए समाधि तक की अवस्था तक कैसे पहुंचाना है अपने ध्यान को। तो भगवान का चिंतन का प्रारंभ होता है भगवान के नाम उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग योग की विद्याओं में बहुत अपने आप को लगाना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये कोई बहुत श्रेष्ठ विधि है। हम सोचते हैं कि जो ध्यान है अगर उसको मैंने गाढ़ा कर लिया तब फिर मुझे पूर्णता प्राप्त हो सकती है। समाधि को प्राप्त करना है, और समाधि हमारे लिए क्या है? बस एक जगह बैठकर बड़ा कड़ा ध्यान भगवान का। ये एक प्रकार का मार्ग है। लेकिन सच्ची समाधि क्या है, सच्चे ध्यान की पूर्णता क्या है? तो एक तरफ हम देखते हैं योगियों का ध्यान है, जो अष्टांग योग का पालन करते हैं, ईश्वर प्राणिधान इत्यादि उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी ओर भगवान के भक्त हैं जो सरल कार्य करते दिखाई देते हैं। तो ध्यान से समाधि तक कैसे जाया जाए? हो सकता है उसमें कई अवस्थाएं बीच में आती हैं, लेकिन इस समय में व्यवहारिक तौर पर कलयुग में भक्ति के आधार रखते हुए ध्यान से समाधि तक कैसे जाना है? सबसे पहले भगवान के नाम का उच्चारण करना शुरू करना है सतत। जब अवसर मिले तब भगवान के नाम का स्मरण करें, आपस में बातचीत में भगवान का नाम लाएं। जैसे जो भक्त होते हैं फोन भी करते हैं तो हरे कृष्णा कहते हैं। हाँ, कुछ भक्त ऐसे हैं कि केवल जब भक्तों को फोन करते तब हरे कृष्णा कहते हैं, बाकी उनको नहीं कहते। हमें सबको कहना चाहिए, सुनने दीजिए सबको नाम, आपका स्मरण बढ़ेगा। वो सोचते हैं हम ऑफिस में फोन करेंगे तो हरे कृष्णा नहीं कहेंगे अपने बॉस को। बॉस क्या कहेंगे, ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल नहीं कहेंगे, बॉस प्रसन्न होंगे। कहिए उनको, आप क्यों डरते हैं? एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार एक कंपनी थी, तो उस कंपनी में, उस कंपनी को बेच दिया, बहुत सारे वर्कर काम करते थे, मिल थी, तो उस कंपनी को एक मुसलमान को बेच दिया गया। तो वो आया और उसने देखा कि सब अलग अलग कोई अपना धार्मिक चीज़ें कर रहे हैं इत्यादि। तो उसने कहा कल से कुछ नहीं, कोई तिलक लगा के नहीं आएंगे, अगर किसी ने किसी को मैंने देखा तो मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा। तो अब नया मालिक है तो सब घबरा गए, किसी ने नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति वो तिलक लगा कर आया, उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और उसने मालिक ने कहा कि आज इसको मैं प्रमोशन देता हूँ। एक ही व्यक्ति है जो अपने सिद्धांतों पर कड़ा रहता है। मैंने कल आपसे कहा आप सब घबरा गए, किसी ने नहीं पहना। तो एक ही व्यक्ति है जो अपने सिद्धांतों पर बहुत कड़ाई से पालन करता है। इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए हमारे बॉस क्या सोचेंगे, हमारे मालिक क्या सोचेंगे, अन्य लोग क्या सोचेंगे, हंसी करेंगे क्या करेंगे, चिंता नहीं, बोलिए हरे कृष्ण। तो भगवान का स्मरण इससे प्रारंभ होगा कि भगवान का नाम लेना हम प्रारंभ करें सतत। दूसरी चीज, जब इस ध्यान को हम कर रहे हैं, भगवान के नाम के ध्यान को हम कर रहे हैं, तो साथ साथ उस ध्यान को गाढ़ा करने के लिए श्रवण भी करें और सेवा में लगें। सच्ची समाधि वो है जहां हमारा सतत चिंतन हो कि किस तरह हम भगवान के नाम का प्रचार सब जगह कर सकते हैं, किस तरह हम सारे लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ सकते हैं। अगर ये हमारा सतत चिंतन है तो हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर हैं। प्रभुपाद इसको लिखते हैं, वो कहते हैं उपदेशामृत में इसको लिखते हैं कि ऐसा भक्त जो सतत ये चिंतन करता है कि किस प्रकार भगवान का नाम का प्रचार हो सकता है, तो फिर वो शुद्ध भक्त है, अगर उसका सतत यही चिंतन है। इसको समाधि कहते हैं। आगे प्रश्न।
जैसा कि आपने बताया था कि भगवान हमारे हृदय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो हम कैसे समझे कि भगवान के द्वारा हमें आदेश मिल रहा है या फिर माया की चाल है?
प्रश्न है कि जब हम भगवान के द्वारा आदेश को प्राप्त करते हैं हृदय में, तो उसको कैसे पहचाने कि ये भगवान का आदेश है या माया की चाल है? पहली चीज, जब कोई भक्ति के लिए अच्छे कार्य की प्रेरणा दी जाती है वो भगवान से आ रही है। जैसे कई बार होता है भक्ति मार्ग में हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमको पता चलता है, हमको मन में आता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी इंद्रियों के वश होकर हम कर देते हैं, तो भगवान निर्देश देते हैं। तो पता कैसे चले भगवान का निर्देश है? भक्ति में, भक्ति की जितनी अन्य क्रियाओं को हम गंभीरता से करते हैं, तब हम भगवान के आदेश को उनके आदेश के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जब तक हम भक्त नहीं है, जैसे हम कहते भीष्म देव ये जान गए कि भगवान के हृदय में क्या है, रूप गोस्वामी जान गए कि भगवान के हृदय में क्या है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति के द्वारा अपने स्तर को इतना ऊंचा उठा लिया कि उनका और भगवान की योजना एक हो गई, या सही दृष्टि में एकत्व को प्राप्त किया। तो ऐसे एकत्व की प्राप्ति तक हमें क्या करना चाहिए? जब तक हम उस स्तर पर नहीं है, अपनी भक्ति को गंभीर करते रहिए। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो आचार्यों से, वरिष्ठों से हम मार्ग निर्देशन लें, जब तक हम उस स्तर पर नहीं आते जहां भगवान से एकत्व हो सके और भगवान की इच्छा को हम समझ सकें। और कोई प्रश्न है?
अपने शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के निर्देशों का पालन करने में हम हमेशा उत्साह बनाकर कैसे रखें जबकि आसपास माया देवी प्रबलता है?
गुरु के आदेशों के आदेशों का पालन करने में हम कैसे उत्साह बनाए रखें जबकि माया देवी इतनी प्रभावी हैं कि वो करने नहीं देती? यही हमारा संघर्ष है। जब हमें आदेश मिले तो हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं? पूरा हम तब करेंगे जब हम उस आदेश के महत्व को समझें, उस व्यक्ति के महत्व को समझें जो हमें आदेश दे रहा है। कभी कभी हम आदेश का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वो व्यक्ति के महत्व को नहीं समझते, हम आदेश के महत्व को नहीं समझते और उस आदेश से जो हमें प्राप्त होने वाला आदेश पालन से उसको नहीं समझते। तो अगर आप ये तीन बातें समझ जाएं, व्यक्ति का महत्व जो हमें दे रहा है, कौन है वो भगवान का भक्त है, वो भगवान के बहुत निकट है और अगर वो हमसे कह रहा है तो मान लीजिए भगवान कह रहे हैं। दूसरी चीज आप ये समझ जाएं कि उस आदेश का क्या महत्व है और तीसरी चीज कि उस आदेश के पालन से हम कहाँ किस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम भगवान के भक्तों का जो दे रहा है आदेश उसको नहीं समझते, जो आदेश मिल रहा है उसके महत्व को नहीं समझते और उस आदेश पालन से जो हमें प्राप्त होने वाला है, अगर ये तीनों चीजें हमें पता हो तो बड़ी गंभीरता से गुरु के आदेश का पालन करेंगे। जब के समय अगर हमें कोई सेवा दी जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? पहले जब करें या सेवा? अगर सेवा बहुत आवश्यक है उस समय, जैसे दो चीजें होती है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, मतलब सेवा उसी समय होनी है तब तो फिर हमें जब को छोड़ना चाहिए। लेकिन सेवा महत्वपूर्ण है लेकिन बाद में कर सकते हैं तो जब को नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए कि आप जब कर रहे हैं और आपसे कहा गया कि भगवान की विग्रह सेवा हो रही है ऑल्टर में और पुजारी अचानक बीमार पड़ गए हैं, आपको अभी तुरंत ऑल्टर में आना है पुजारी की सेवा करने, आप क्या करोगे? आप कहोगे 16 माला करने के बाद आऊंगा? नहीं, हमें तुरंत जाना पड़ेगा क्योंकि ये स्थिति उस तरह है। दूसरी ओर आपको कहा जाए कि आप अभी जप कर रहे हो तो आप एक काम कीजिए कि दिन में 3 बजे, दोपहर को 3 बजे कोई भक्त आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करनी है, कुछ भोजन आदि की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, अच्छे बैठने की व्यवस्था, तो वो आप करिए। आप क्या करोगे? आप छोड़कर नहीं जाओगे क्योंकि 3 बजे तक समय है, जरूरी सेवा है लेकिन बाद में कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि अगर वो सेवा उसी समय के लिए नहीं है तो हम उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसी समय के लिए है तो हमें जब को छोड़ना होगा। जब आंखें बंद करके करें या आंखें खोल कर करें, दोनों अवस्थाएं ठीक है लेकिन ज्यादातर जब आंखें बंद करके होता है तो फिर हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। तो अगर आंखें बंद करके हम निद्रा में नहीं जा रहे हैं लेकिन ध्यान बढ़ रहा है तो कोई गलती नहीं है, हम आंखें बंद करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आंखें बंद करके हमें अनजाने में हमें पता भी नहीं चल रहा है और हम सो रहे हैं, हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो अच्छा है कि आंखें खोलकर जप किया जाए। और आंखें खोलकर जप करना है तो हमारे सामने या तो भगवान के विग्रह हो सकते हैं, उनके कोई चित्र हो सकते हैं, शिला प्रभुपाद हो सकते हैं ताकि शुद्धता बनी रहे।
जप करते समय क्या चिंता होना चाहिए?
ये एक ही का प्रश्न है कि अलग अलग प्रश्न है? अलग अलग प्रश्न। अच्छा, सारे जप पर पूछ रहे, हमने सोचा शायद एक ही भक्त प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार जप के ऊपर। हाँ, तो जप क्या प्रश्न है अभी? जप करते समय हृदय में क्या चिंतन करना चाहिए? हमारी अवस्था में इस समय जप करते समय केवल सुनने का प्रयास करना चाहिए। हृदय में एक ही चिंतन कीजिए, मैं कितना सुन रहा हूं। कोई आवश्यकता नहीं है हृदय में राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने की। ये मत सोचिए कि अब कृष्ण क्या कर रहे होंगे आध्यात्मिक जगत में, या राधा रानी क्या कर रही होंगी, यशोदा क्या कर रही होंगी। प्रयास मत कीजिए कृत्रिम रूप से इसको करने का। स्वाभाविकता आए ठीक है, तो क्या करना है, हमारे हृदय में क्या चिंतन हो, मैंने कितने महामंत्र सुन लिए, अब गिनिए भले, अब एक सुन लिया, दो सुन लिया, तीन सुन लिए, तो आपका चिंतन एक ही होना चाहिए इस समय कि किस तरह मैं जो बोल रहा हूं उसको कितने ध्यान से सुन सकूं, क्या हर एक मंत्र में सुन रहा हूं या नहीं, 108 मंत्र में से कितने मंत्र मैंने सुने और कितने मंत्र बिना सुने हो गए, इसको ध्यान रखना चाहिए। आगे ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, हाँ ये स्वाभाविक है। कुछ भक्त मान लीजिए कोई कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब पर हैं और वो अपने प्रोफेसर की जॉब का इतना उपयोग करते हैं कि जितने लड़के मिले उनको अच्छे से भक्त बनाते हैं, कुछ उनमें से ब्रह्मचारी बनते हैं। ऐसे कई हमारे भक्त हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रचार करके कई भक्त बनाए, और दूसरी ओर ऐसे भक्त भी होते हैं कि वो अपनी स्थिति पर हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, ये सोच कर कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया तो कल को मेरी नौकरी जा सकती है और फिर मैं नहीं हो पाऊँ कर पाऊँगा, तो कैसे उसको समझना चाहिए, यही प्रश्न है ना, यही दोनों। तो अपनी अपनी स्थिति में रहते हुए जितना हम प्रचार में मदद कर सके हमें करना चाहिए। अगर कभी कभी किसी संस्था का जहां वो कार्य कर रहे हैं किसी जगह पर वातावरण ऐसा है कि उनके लिए बिल्कुल प्रचार की सुविधा नहीं है, तो भी किसी न किसी तरह प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप में मदद करनी चाहिए। हाँ प्रत्यक्ष कर सकते हैं जब सुविधा है तो वहां प्रत्यक्ष करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, कॉलेज में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बच्चों को कुछ भगवद गीता का ज्ञान दे सकते हैं इत्यादि, लेकिन जहाँ सीधा सुविधा नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से तो करना ही चाहिए। तो बैलेंस इस तरह हो सकता है कि अगर जो भक्त हैं जिस भी स्थिति में हैं उनको किसी न किसी रूप में वहाँ पर इसकी मदद करनी ही चाहिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर हम अच्छे डॉक्टर हैं तो हमें अन्यों को समझाना चाहिए कि कृष्ण कितने बड़े डॉक्टर हैं। अगर हम अच्छे इंजीनियर हैं तो हमें अन्यों को समझाना चाहिए कि कृष्ण कितने बड़े इंजीनियर हैं। अर्थात जो भी ज्ञान हमें है उसका प्रचार हमें करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।